ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव परिणाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों और सिक्किम की 32 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ साथ आयोजित किए गए थे। अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंतिम परिणाम लगभग उपलब्ध हो गए हैं और अब हम इन नतीजों पर गौर करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र के मामलों के विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुर्खियों में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
अच्छा, 2019 के अगर हम अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े देखें तो अरुणाचल प्रदेश में उस समय बीजेपी ने 42 सीटें हासिल की थी और अभी के जो लेटेस्ट आंकड़े दिख रहे हैं उसमें लगभग 46 पर है और बाकी तो इसमें बीजेपी के कुछ सीटों का इजाफा हुआ है। पिछली बार से बढ़ गई ये सीटें, इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा है।
बिल्कुल, ये तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लगभग अगर आप देखें तो उत्तर पूर्व भारत में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े हैं तो उसका परिणाम यही सीधा अरुणाचल में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात है, अरुणाचल प्रदेश एक बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है और उसको बहुत साल बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिफेंस के और सिक्योरिटी के माध्यम के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं तो उसमें काफी गतिशील रूप से काम हुआ है और आज आपकी पूरी वहां के कई इलाकों में बॉर्डर के आप जा सकते हैं, आप अपनी नॉट ओनली मिलिट्री बट सप्लाईज हर तरीके का आप दे सकते हैं। तो इससे लोगों के बीच में एक विश्वास काफी हुए पिछले 10 सालों में, इसीलिए ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं आए। और जहां तक चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल के, अपने पेमा खांडू जी काफी यूथफुल स्पिरिट से हर तरीके के काम के अलावा सोशल एक्टिविटीज इनकी काफी स्ट्रांग है। चौहा मेन जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो भी अपने इलाके में काफी एक्टिव है, तो इसी से एक ऑपोजिशन लेस सिचुएशन हो गया। अगर आप देखें तो कांग्रेस ने कोई खाता भी नहीं खोला वहां पे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो अरुणाचल के लिए मोदी सरकार आने के बाद से काम हुए, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर, आउट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका डायरेक्ट नतीजा राज्य सरकार की कामकाज के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे छोटे छोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज गांवों में, छोटे छोटे शहर में होते रहे और इसी से लोगों का आस्था सरकार के ऊपर वहां भी रहे और केंद्र सरकार के ऊपर तो लगे रहे।
तो आपने बताया कि वहां जो पिछली सरकार थी, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, उसके द्वारा जो शासन वहां प्रदान किया गया था और उसके अलावा जो केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उससे लोगों का विश्वास बना हुआ था जिसके आधार पर उन्होंने वोट किया है। क्या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा की पहुंच बढ़ रही है?
ये बात तो साबित हो गई पिछले 2016 से, जब अगर असम और अरुणाचल में आप ले तो कांग्रेस में जो नेता थे वो एन मास बीजेपी में आए, तो बीजेपी के वहां में ऑर्गेनिक ग्रोथ भी ना होते वक्त भी आज इन्होंने इतने कम समय में अपने काम के आधार पर उसमें आस्था लोगों का बीच में जगाया, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे असम भी आप अगर देख लो उत्तर पूर्व में। तो इससे आगे जो बीजेपी की बात आती है, उत्तर पूर्व में कई राज्यों में बीजेपी का प्रभाव अभी काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता नहीं ये किसी तरीके से कमेगा। और एक बात उत्तर पूर्व में और भी होते है कि केंद्र में जिनकी सरकार होते हैं उनके साथ साथ हमेशा इनकी भी वहां स्टेट गवर्नमेंट अभी या रूलिंग पार्टी भी वो उस तरीके के अलाइनमेंट हो जाते हैं। तो अगर केंद्र में देखे तो जो रुझान आए या जिस तरीके से आप एग्जिट पोल्स को पकड़े या ऐसे भी लोगों के बीच में जो है, तो सेंटर में फिर से एक बार मोदी सरकार आने की पूरी उम्मीद है। तो इसी के साथ साथ वोटिंग तो एक साथ हुए तो मुझे लगता है कि वो फैक्टर भी अरुणाचल में रहे, लेकिन मुझे लगता नहीं ये सबसे बड़ा फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक आस्था हुए है कि काम हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गए वहां के लोगों को और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट सेंटर से मिला हुआ है।
चलिए, हम अरुणाचल में अब जो बाकी दलों का प्रदर्शन है उस पर देखें तो एनपीपी 5 पर है और शायद पहले भी लगभग उनका वही आंकड़ा था। आपने बताया कि कांग्रेस की सीट तो छूट गई है और इसके अलावा बाकी देखें तो आईएनडी 3 है, एनसीपी 3 है, पीपीए 2 है, इस तरह के अभी ताजा आंकड़े हैं, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
एनपीपी जैसा है 5 सीटें जिसमें इनका विक्ट्री हुए, तो ये कॉनरेड संगमा जो मेघालय की चीफ मिनिस्टर है उनकी पार्टी है, उनकी मेजोरिटी या उनकी जो प्रभाव है जनरली मेघालय में सीमित है, लेकिन छोटे मात्रा में अरुणाचल और नागालैंड दोनों राज्यों में भी इनकी कुछ प्रभाव है। लेकिन एनपीपी भी नॉर्थ ईस्ट की एक रीजनल पार्टी के हिसाब से आज भी वहां उस तरीके का इनका स्थान नहीं हुआ है। मुझे भी लगता नहीं कि अरुणाचल और नागालैंड में किसी भी तरीके से इनका उस तरीके से ग्रोथ होगी कल वो वहां बीजेपी या कोई भी दूसरे कोई सरकार को चैलेंज कर पाएंगे। तो एक प्रो नॉर्थ ईस्ट किसी एक रीजनल पार्टी की इमर्जेंस हो रहा है क्या, ये भी लगता नहीं। ये दोनों नागालैंड और अरुणाचल में इनके बड़े कम सीट है जिससे वो कुछ प्रभाव नहीं कर सकेगा। और इतने बहुमत से जब एक सरकार है 46 सीट इनके है तो किसी का ना सपोर्ट भी चाहिए और काम अपना तरीका से करेंगे वो लोग।
अब हम चलते हैं सिक्किम पर गौर करते हैं। तो वहां जो सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है इस साल के अभी के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें से 32 में से 31 सीटों के आंकड़े आ रहे हैं उन्होंने हासिल कर लिए हैं। तो एकमात्र अग्रणी पार्टी और एक सीट मिला है एसडीएफ को जो जबकि 25 साल तक उसने राज किया है। सिक्किम में ये स्थिति कैसे बन गई है?
देखिये सिक्किम में रीजनल पार्टी की दबाव पिछले 3 दशक से अब है और जैसे कि पहले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की जब सरकार होती थी एक समय अगर देखें तो 2004 में इनके पास 71% वोटिंग आए थे, आज सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी को 58% वोट मिले हैं। तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पिछले चुनाव में भी इनके पास काफी सीट्स थे, हालांकि कुछ लोग बीजेपी में चले भी गए थे। तो जो सरकार है वहां पे प्रेम कुमार तमांग के, हालांकि इनके खिलाफ करप्शन और बहुत सारे केसेस एंटी इनकम्बेंसी की कुछ उम्मीदें लोगों के बीच में थे, लेकिन अगर आप वोटिंग पैटर्न देखें तो इनके काफी मार्जिन अच्छा रहे और लगभग बहुत सारे सीट में बीजेपी तीसरा स्थान पर रहे। हालांकि बीजेपी का कुछ तरीके का कोई प्रभाव नहीं रहा, लेकिन एक आशा था कि बीजेपी भी और धीरे धीरे एसडीएफ से आगे निकल आएंगे। तो ऑपोजिशन पार्टी वहां पे एक मुझे लगता है इस बार सफाया तो हो गया और सिक्किम में, लेकिन एक बात रह गया कि एक रीजनल पार्टी की सरकार 3 दशक के लिए रहा है और आगे भी लगता है वो रहेगा। अगर आप देखिए इसको अगर तो ये एक प्रोटेक्टिव तरीका से अपने कल्चर अपनी कुछ कुछ संस्थाएं और बॉर्डर स्टेट होने का नाता है, इनका भी अरुणाचल की तरह उस तरीका से आशंका है क्योंकि चीन की प्रभाव दोनों राज्यों में है, लेकिन दोनों राज्यों में वोटिंग पैटर्न अलग रहे और सिक्किम में ज्यादातर ये अपने बीच में सीमित रखे कि हमें अपना सब कुछ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और टूरिज्म का पोटेंशियल आप जैसे जानते हैं कि उसको इस सरकार ने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म से कमाई लोगों के बीच में काफी अच्छा आया है, तो हो सकता है इसी का भी एक कारण रहा कि पिछले बार से इनकी बहुत अच्छा नतीजा इस बार आए।
वहां मुख्यमंत्री तमांग ने कहा कि जो काम वे 25 वर्षों में नहीं कर पाए थे जो पहले की सरकारों के कहा वो हमने 5 वर्षों में किया है, लोगों ने उसी आधार पर वोट दिया है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है लेकिन काम हुआ है और आज अगर आप देखें तो केंद्रीय सरकार का नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक जो परसेप्शन हमेशा होते थे डिस्टर्ब एरिया है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको लोगों के सामने टूरिस्ट के डोमेस्टिक इंटरनेशनल सबके सामने में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वो एक परसेप्शन चेंज होता गया और सिक्किम एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी स्टेट रहा क्योंकि सिक्किम ने पहले ही टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अब होटल पकड़िए अब गेस्ट हाउसेस आप शेफ कुक आप हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर हर दिशा में जो कुछ नेचुरल टूरिज्म वहां पे सीनिक स्पॉट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे काम इन्होंने किया है और जब टूरिस्ट का प्रेजेंस वहां में कई मात्रा में बढ़ गए तो इसी से वो 5 साल और 25 साल की कोई एक कंपैरिजन कर रहे हैं।
अगर हम इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों पर गौर करें तो कोई सामान्य बात दिखती है कि जो अब जैसे दोनों राज्यों के जो परिणाम है ये कैसे आगे वहां के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं?
कोई तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी स्थिति से क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर पूर्व राज्य में एक प्रयास रहे हैं। अगर आप देखें तो जितने सारे मिलिटेंसी एक्टिविटीज भी थे बहुत सारे राज्य में और गृहमंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से सबको टेबल मिला के बिठाया तो ये सारे जितने सॉल्यूशन थे उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्वाइंट ये रहता था कि इनकी कल्चर, इनकी नित्य, इनकी फूड हैबिट्स, ये सबको एक महत्व दिया जाएगा और इनको नॉट ओनली प्रिजर्व करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए सारे देश में प्रयास किया जाएगा। तो ये गति तो चलते रहेंगे कि अरुणाचल की कल्चरल एक्टिविटीज अब सिर्फ दिल्ली नहीं, बेंगलोर, चेन्नई और बॉम्बे में भी देख पा रहे हैं आज। और इस तरीका से अगर एक संतुलित रूप में देश में विदेश में इनकी कल्चर की एक प्रोपोगेशन उसी तरीके से रहे, मुझे तो लगता है कि ये दोनों सरकार इसी में प्रयास करेगी, क्योंकि उसमें इनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम की तरफ भी फायदा होता है। उस दोनों स्टेट में कोई हेवी इंडस्ट्रीज तो लगना नहीं है, तो सर्विस इंडस्ट्री का बड़ा महत्व रहता है, तो सर्विस इंडस्ट्री का जहां महत्व रहता है तो वहां सॉफ्ट स्किल्स की बड़ा भूमिका रहता है। तो इसीलिए आपकी कल्चर, फूड हैबिट्स, गान नृत्य, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ये सारे चीज की इम्प्रूवमेंट्स होते रहेगा और सारे एंगेजमेंट्स होते रहेगा और सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ते जाएंगे।
जी, अगर देखें तो दोनों राज्यों में लगभग स्टेटस को है, अगर पहले वाली ही चीजें बरकरार हैं अभी भी, लेकिन इसके अलावा उससे पहले से अगर हम तुलना कर रहे हैं, जैसे एसडीएफ की बात कर रहे हैं हम सिक्किम में कि उसने 25 साल तक राज किया और आज एक सीट पर सिमट गई है, तो क्या कुछ वहां के रीजनल डायनेमिक्स हैं, क्षेत्रीय डायनेमिक्स हैं जो इन चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं?
देखिए, एक तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी ड्रिवन भी रहता है, सिक्किम में तो है ही। अगर आप देखें तो प्रेम कुमार तमांग एक समय पवन चमलिंग के क्लोजेस्ट पॉलिटिकल साथी आप बता सकते हैं, आज वो निकल आए तो वो अब उनकी सेंटर्ड ये पार्टी है और उनकी सेंटर्ड एक्टिविटीज बढ़ गए। तो एक पर्सनैलिटी ड्रिवन गवर्नेंस स्ट्रक्चर वहां रहेंगे और फर्क नहीं पड़ता है, अब एसडीएफ 25 साल रहा, अब क्रांतिकारी पार्टी है, अब आगे भी कोई नया कुछ आ सकता है, तो एक पर्सनैलिटी ड्रिवन वाला फैक्टर इम्पोर्टेंट रहेगा।
सिक्किम में तो जैसे आपने बताया कि पर्सनैलिटी ड्रिवन है, अरुणाचल पर क्या कहना चाहेंगे?
वहां भी लगभग समान स्थिति है, अगर देखें तो आप दोरजी खांडू की बेटा पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर है वो भी एक फैमिली ट्रेडिशन से चलता रहा, अगर आप देखें तो पहले गेगोंग अपांग रहते थे, उनका बेटा भी कुछ समय के लिए सेंटर में रहे मंत्री, गेगोंग अपांग लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे, तो वहां भी वही कुछ फैमिलीज में ये रह जाता। और जहां तक पेमा खांडू है वो काफी नौजवान है अभी भी और बड़े एक्टिव है, तो पॉलिटिकली वो स्ट्रांग है, तो आगे तक इनकी पॉलिटिकल फ्यूचर भी काफी स्ट्रांग है, तो उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन एक मैंने बताया जैसे नॉर्थ ईस्ट में सेंटर के साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है कि सेंटर में जिस पार्टी की सरकार होती है वहां उनके होते हैं, तो अगर उससे कोई प्रभाव पड़ता है या मुझे तो लगता नहीं ये सिचुएशन चेंज होने वाले इमीडिएटली, अगले 5 साल 10 साल के लिए इसी तरीके से वहां भी पॉलिटिक्स चलता रहे।
जैसा आपने बताया कि सेंटर में जिसकी सरकार होती है उसके साथ अलाइन होते हैं नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्य या अधिकांश राज्य, लेकिन अभी ये दो परिणाम हमारे पास हैं तो इनको देखें अगर हम, तो इन परिणामों का देश की राजनीति के लिए क्या अर्थ देखते हैं?
इन परिणामों से देश की राजनीति की कंपैरिजन में यही बात आते हैं, एक बात हमेशा कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा अलग है, नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े ने एक मेन स्ट्रीम शब्द आते थे, तो वो मेन स्ट्रीम और फेरी वो मुझे लगता है वो जो गैप है वो बिल्कुल कम हो गया या लगभग चले गए। जिस तरीका से प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया हुआ है कि केंद्रीय मंत्री हर राज्य के नॉर्थ ईस्ट में महीना में कम से कम 2 केंद्रीय मंत्री रहे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद कितने बार वहां गए अपने 10 साल में, तो एक आस्था हर समुदाय में हर ट्राइब्स में आए है कि हम सब एक साथ मिलकर भारत को आगे बढ़ाना है। तो इसी में जो एक मेन स्ट्रीम और फेरी वाला कॉन्सेप्ट वो दूर हुआ है और वो देश की नेशनल इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्व रखता है, और विशेषकर अरुणाचल और सिक्किम दो राज्य चाइना के साथ बॉर्डर में, और चाइना का कहानी गतिविधि हम सबको पता है, गलवान यहां करते अरुणाचल में करते, तो इसमें मेरे ख्याल से एक नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देश एकत्रित है, हम सब एक है, नेशनल इंटीग्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा मैसेज इस दोनों रिजल्ट से होता है।
और अंत में संक्षेप में क्या आप बताना चाहेंगे कि इन दोनों राज्यों में जो अब नई सरकारें बनेंगी उनके सामने प्रमुख चुनौतियां क्या होंगी?
चुनौतियां दोनों राज्यों में एक ही है कि एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ाना है, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से बढ़ाना है, सर्विस इंडस्ट्री और एंसिलरी इंडस्ट्रीज इसमें किस तरीके से और वो सहाय कर सकते हैं कि लोग वहां से और एंटरप्रेन्योर बने और वहां रह के अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाए।
सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपको भी।
अभी आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव परिणाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।